पाठ 26 अध्याय 18 और 19।
जैसा कि हम आज लैव्य व्यवस्था 18 से अपना अध्ययन आरंभ करते हैं, यह वह अध्याय है जो मुख्य रूप से मानव कामुकता से संबंधित है तथा इस संबंध में इसराइल से क्या अपेक्षा की जाती है, इसके विपरीत कि इतिहास के इस समय में शेष विश्व क्या करता है। हमने पिछले सप्ताह पूरा अध्याय पढ़ लिया था, इसलिए आइए अपनी यादों को ताजा करने के लिए इस सप्ताह केवल एक छोटा सा भाग ही दोबारा पढ़ें। लैव्य व्यवस्था 18 का 6-16 को दोबारा पढ़ें। पद 16 के माध्यम से हम यह निर्देश प्राप्त कर रहे हैं कि अनाचार क्या होता है। एक पुरुष द्वारा किसी ऐसी महिला के साथ यौन संबंध बनाना जो इन निषिद्ध परिस्थितियों में से किसी में भी बहुत निकट संबंधी, चाहे जैविक या पारिवारिक रही हो, अनाचार है। अब चूंकि सदियों से संस्कृति में बहुत बदलाव आया है और चूंकि ये निषेध और नियम प्राचीन मध्य पूर्वी समाज में पेश किए गए थे, इसीलिए हमें यहां जो बताया जा रहा है उसका सार भूल सकते हैं। यह इच्छुक महिलाओं की तलाश करने वाले एक शिकारी पुरुष पर बंधन लगाने से कम था, बल्कि यह परिभाषित करने के बारे में था कि एक पुरुष किससे विवाह कर सकता है और किससे नहीं, एक पुरुष किससे संतान पैदा कर सकता है और किससे नहीं। निष्कर्ष, किसी भी चीज से ज्यादा इसका संबंध इस बात से था कि एक पुरुष कहां पत्नी की तलाश कर सकता है।
और संक्षेप में हम देखते हैं कि अगर उसके पिता की मृत्यु हो गई या उसने अपनी जैविक मां को तलाक दे दिया, तो एक आदमी अपनी जैविक मां से शादी नहीं कर सकता, न ही वह अपनी सौतेली मां अपने पिता की पत्नी से शादी कर सकता है। अगर उसके पिता की मृत्यु हो गई या उसने अपनी सौतेली मां को तलाक दे दिया। सूची में अपनी सगी बहन, अपनी सौतेली बहन या यहां तक कि सौतेली बहन से भी शादी करने पर प्रतिबंध शामिल है। एक आदमी अपनी पत्नी के रूप में अपने बेटे की बेटी, पोती या उस बेटी की बेटी को नहीं मान सकता, यानी एक महिला पर पोती। बेहतर होगा कि आप नहीं के इस चार्ट को देखें।
मैं इस बारे में बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन यह देखते हुए कि बाइबल के बाकी हिस्सों में वैवाहिक संबंध इस तरह के आदेशों के इर्द गिर्द घूमते हैं, आइए कुछ और शब्दों को परिभाषित करें। सगे संबंधी और वैवाहिक। मूल रूप से सगे संबंधी का मतलब है कि कोई व्यक्ति वंशावली के हिसाब से रक्त से बहुत करीब से संबंधित है। सगे संबंधी का मतलब है कि रिश्तेदार शादी के द्वारा किसी विशेष परिवार से जुड़ गया है और इसलिए या तो कोई वंशावली रक्त संबंध नहीं है या यह बहुत दूर का रिश्ता है। कानूनी दृष्टिकोण से लैव्य व्यवस्था 18 में जो नियम निर्धारित किए गए हैं वे इस बारे में हैं कि सगे संबंधी संबंध क्या होते हैं और कब संबंध इतना दूर होता है कि उसे वैवाहिक माना जाए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मूसा के दिनों में परिवार के किसी सदस्य से विवाह करना वांछनीय था, इसलिए सवाल यह था कि कानूनी तौर पर परिवार का कितना दूर का सदस्य विवाह साथी बनने के योग्य है। कबीले या जनजाति के भीतर विवाह करना एक अच्छी बात, एक महत्वपूर्ण बात के रूप में प्रचारित किया जाता था। एक आदमी का अपने चचेरे भाई से विवाह करना लगभग आदर्श साझेदारी के रूप में देखा जाता था। तो आखिर कोई व्यक्ति रक्त संबंध में कितना करीब आ सकता है और इस पर परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता, यही लैव्य व्यवस्था 18 स्थापित करता है। अब आयत 16 में एक आदमी की अपने भाई की पत्नी के साथ संबंध न बनाने की बात कही गई है। समझने वाली बात यह है कि सामान्य तौर पर इस अध्याय में जिस बात की बात नहीं की जा रही है वह है व्यभिचार। इन यौन संबंधों के होने का कोई और कारण हो सकता है और आमतौर पर यह उस विशेष महिला से विवाह होता है। यह भी थोड़ा भ्रमित करने वाला है कि एक बार जब कोई पुरुष किसी महिला से विवाह कर लेता है तो कुछ परिस्थितियों में उस महिला के रिश्तेदारों को पुरुष का रक्त संबंधी रिश्तेदार माना जाता है, भले ही कोई वास्तविक रक्त संबंध न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि इब्रानी दृष्टिकोण यह था कि विवाह पुरुष और महिला को एक मांस के रूप में एक साथ लाता है। मानव जाति के लिए यह निर्देश उत्पत्ति से वापस आता है और इसलिए यदि वह महिला पहले से विवाहित थी और उसके बच्चे थे तो उन बच्चों को करीबी रक्त संबंध माना जाता था, भले ही वे तकनीकी रूप से नहीं थे। इसलिए एक आदमी ऐसी प्रक्रिया नहीं कर सकता था जिसके तहत उसने शादी की और फिर वह मर गई, या उसने उसे तलाक दे दिया और फिर उसकी बेटी से शादी की, भले ही वह बेटी जैविक रूप से उसकी न हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि इब्रानी संस्कृति उस सौतेली बेटी को उतना ही रक्त संबंधी मानती थी जितना कि अगर वह जैविक रूप से उसकी अपनी संतान थी।
मैं जानता हूं कि यह विस्तृत है और भ्रमित करने वाला हो सकता है, लेकिन इब्रानी समाज बहुत जटिल था और ये ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें कम से कम कुछ स्तर पर समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें तोरह और बाइबल के शेष भाग में इनसे निपटना होगा।
समझने के लिए एक और नियम, सामान्य तौर पर जहां तक पुराना नियम युग का सवाल है, पुरुष व्यभिचार नहीं कर सकते थे। इसे महिलाओं से जुड़ा अपराध माना जाता था। विवाहितर यौन संबंध रखने वाले पुरुष को आमतौर पर नीची नजर से देखा जाता था, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए किसी को सजा दी जाए। बेशक एक आदमी जिसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया हो निश्चित रूप से इससे खुश नहीं होगा। वास्तव में वह सम्मान के लिए दूसरे आदमी को मार सकता है और शायद अपनी पत्नी को भी मार सकता है, और आमतौर पर इसे न्यायोचित हत्या माना जाता था। वैसे भी यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू करने के बाद उस सभी दोषपूर्ण सोच को ठीक कर दिया।
जहां तक इस आयत 16 का सवाल है और एक आदमी का अपने भाई की पत्नी से विवाह न कर पाना, इस नियम का एक बड़ा अपवाद व्यवस्था विवरण 25 में पेश किया गया है। अगर किसी आदमी का शादीशुदा भाई है और फिर भाई मर जाता है, अगर उस मृत भाई की पत्नी ने उसे वारिस के लिए कोई बेटा पैदा नहीं किया है, तो जीवित भाई का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह उससे विवाह करे ताकि वह मृतक भाई के नाम पर बच्चे पैदा करे। इसे इजरायली वंशों को अक्षुण्ण रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था, और उतना ही महत्वपूर्ण यह प्राचीन विश्वास था कि यह एक आदमी की संतान में ही था कि उसकी शारीरिक मृत्यु के बाद भी उसका जीवन सार मौजूद रहता था।
आइए अध्याय 18 को थोड़ा और पुनः पढ़ें। लैव्य व्यवस्था 18:17-21 को दोबारा पढ़ें।
आयत 17 और 18 में हम विवाह के मुद्दे से लेकर रक्त संबंधियों तक यौन संबंधों से जुड़े नैतिक मामलों की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, एक आदमी को किसी से विवाह नहीं करना चाहिए या उसके साथ यौन संबंध नहीं रखना चाहिए।
एक स्त्री और उसकी बेटी दोनों, यह उस स्त्री को संदर्भित करता है जिसकी बेटी किसी दूसरे पति से हुई थी, न ही उस स्त्री की पोती के साथ। नहीं, आयत 18 में एक पुरुष को दो या उससे अधिक बहनों से विवाह करना चाहिए जो एक ही समय में दोनों को पत्नी के रूप में रखती हो। लैव्य व्यवस्था 18 के अगले भाग पर जाने से पहले आइए एक क्षण रुकें और एक ऐसी बात पर चर्चा करें जिसके बारे में आप में से कई लोग पहले से ही सोच रहे होंगे। क्या अब्राहम ने अपनी सौतेली बहन से विवाह नहीं किया था? और खुद इज़राइल के बारे में क्या ख्याल है? याकूब, वह महान कुलपिता जिसने दो बहनों राहेल और लिया से विवाह किया? खैर, निश्चित रूप से यह लैव्य व्यवस्था के समय से पहले हुआ था। फिर भी हमें यह सवाल पूछना चाहिए, क्या उन्होंने कुछ गलत किया? खैर, हमारे पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि भले ही ईश्वर की आदर्श इच्छा न हो कि वे बहनों या इतने करीबी पारिवारिक रक्त संबंधों से विवाह न करें, लेकिन उस समय ऐसा करने की अनुमति देना उनकी सामान्य इच्छा थी। मैं आपको नहीं बता सकता कि क्यों, लेकिन न ही मैं रूपक बनाने जा रहा हूं और न ही कोई फूलदार कारण बना रहा हूं या यहोवा के विकल्पर्वों का बचाव कर रहा हूं। मुद्दा यह है कि जैसा कि नूह के साथ हुआ था जब बाढ़ के बाद वह मांस खा सकता था, लेकिन उस महान जल प्रलय से पहले यह निषिद्ध था, ऐसा ही विवाह के मामले में रक्त संबंधी या करीबी रिश्तेदारों की परिभाषा के साथ भी है। माउंट सिनाई पर एक अलग गतिशीलता उभरी।
अब हम यौन मामलों में आगे बढ़ते हैं जो अनाचार के बारे में नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि वे अनैतिक हैं। और जैसा कि हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि एक महिला अपने मासिक धर्म के दौरान अशुद्धता की स्थिति में प्रवेश करती है, मुझे यह दिलचस्प लगता है कि इसे एक बार फिर यहां लाया गया है और इसे अशुद्ध के साथ नहीं बल्कि अनैतिक के साथ जोड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि महिला एक प्राकृतिक शारीरिक क्रिया करने के कारण अनैतिक है, लेकिन यह कि पुरुष पति अपनी पत्नी के साथ उस समय के दौरान यौन संबंध बनाकर परमेश्वर की नजर में कुछ अनैतिक कर रहा है जब वह निदाह की स्थिति में है, जो अशुद्धता की स्थिति है।
इसके बाद 20वें पद में किसी पुरुष द्वारा किसी अन्य पुरुष की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने पर प्रतिबंध है। वास्तव में यह पद अधिकांश अनुवादकों द्वारा दी गई अनुमति से थोड़ा अधिक स्पष्ट है। यह शाब्दिक रूप से कहता है कि एक पुरुष को अपने पड़ोसी की पत्नी में अपना बीज नहीं डालना चाहिए। इसका वास्तव में अर्थ है कि पुरुष को उस विवाहित महिला को गर्भवती नहीं करना चाहिए। इस सब की अनैतिकता के अलावा सांस्कृतिक वास्तविकता यह थी कि इस प्रकार के अवैध संबंधों से उत्पन्न बच्चों को नीची दृष्टि से देखा जाता था, उनसे दूरी बनाई जाती थी और वे इससे बहुत पीड़ित होते थे, हालांकि वे निर्दोष थे। ध्यान दें कि यह भी कहा गया है कि जो पुरुष ऐसा करता है वह महिला के साथ ही अशुद्ध हो जाता है, अर्थात पुरुष और महिला दोनों ही कुछ गलत कर रहे हैं और वे इससे अशुद्ध हैं। यह दिलचस्प है कि कैसे सबसे पवित्र इब्रानियों ने भी कानून के उस हिस्से को छोड़ दिया और इसे परंपरा बना दिया कि केवल महिलाएं ही व्यभिचार का अपराध कर रही थीं। यहूदी संस्कृति ने भी इसकी सराहना नहीं की जब यीशु ने पुरुषों को उनके पाखंड और पाप की याद दिलाई जब उन्होंने अपनी पत्नियों के अलावा अन्य महिलाओं के साथ संबंध बनाए। फिर पद 21 में हमें एक आदेश मिलता है जो वास्तव में बाकी सभी आदेशों के साथ मेल नहीं खाता है। यह एक आदेश है कि इजरायली बच्चों को मध्य पूर्वी देवता मोलिक को मानव बलि के रूप में चढ़ाने की अनुमति न दी जाए। यहां सिर्फ एक शब्द। लंबे समय तक यह माना जाता था कि लैव्य व्यवस्था को निर्गमन के आसपास नहीं बल्कि काफी बाद में लिखा गया होगा, आंशिक रूप से मोलिक के उल्लेख के कारण। सभी सबूत ये थे कि कनानी लोग लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मोलिक की पूजा नहीं करते थे, निर्गमन के लगभग 600 साल बाद। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यर्दन के अम्मान के ठीक बाहर एक वेदी मिली जो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है, और देखिए इस वेदी के नीचे कई छोटे बच्चों और शिशुओं के कंकाल दबे हुए थे। कोई इस बात पर बहस कर सकता है कि क्या यह विशेष रूप से मोलिक को समर्पित वेदी थी, लेकिन यह निश्चित था कि यह किसी न किसी देवता के लिए एक वेदी थी। इसीलिए अब यह बहस का विषय नहीं रह गया है कि निर्गमन के समय कनान देश के एक हिस्से में उस युग के दौरान निश्चित रूप से बच्चों की बलि दी जाती थी।
लैव्य व्यवस्था अध्याय 18 का 22 को पुनः अंत तक पढ़ें।
पद 22 में हमें समलैंगिकता के विरुद्ध स्पष्ट आदेश मिलता है। याद रखें, अब यह चेतावनी पुरुषों के लिए थी। प्राचीन कनानी लोगों के बीच पुरुष समलैंगिकता का प्रमाण गैर बाइबल अभिलेखों में भी मिलता है, और परमेश्वर कहता है कि एक आदमी के लिए ऐसा करना इब्रानी में टोएवा है, जिसका आमतौर पर एक घृणा के रूप में अनुवाद किया जाता है। यह वर्णन करने के लिए सबसे मजबूत संभव शब्द था कि समलैंगिक संबंध परमेश्वर के लिए कितना भयानक अपराध था। कनानी पुजारियों के अपने देवताओं के लिए अनुष्ठान समलैंगिक कार्य करने के प्राचीन चित्रण पाए गए हैं, और यहोवा ने यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया था कि उनके लोगों को इस तरह के विकृति में शामिल नहीं होना चाहिए। व्यवस्था विवरण में इब्रानी शब्द मेहर केलेव का उपयोग मजदूरी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मौद्रिक भुगतान आमतौर पर एक समलैंगिक वेश्या को दिया जाता है। इसका अनुवाद कुत्ते की मजदूरी के रूप में किया जाता है। कुत्ता एक पुरुष समलैंगिक वेश्या के लिए एक मुहावरा था।
इसलिए किसी भी मसीही को अपने रुख के बारे में रक्षात्मक होने की कोई जरूरत नहीं है, या समलैंगिकता के बारे में बिना किसी शर्त के हमारा रुख क्या होना चाहिए। यह परमेश्वर के लिए घृणित है। इसे यहां और पुराने नियम और नए नियम दोनों में कई जगहों पर सीधे तौर पर कहा गया है। इसलिए मसीह के शरीर में समलैंगिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, और हमें अपने समाज में इसके खात्मे को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। कोई भी यह नहीं कह रहा है कि अगर हमारी कोई समलैंगिक बेटी या बेटा या दोस्त है तो हमें उनसे प्यार करना या उन्हें स्वीकार करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन यहोवा से
इस तरह के विनाशकारी व्यवहार से उन्हें बचाने के लिए प्रार्थना करके उनसे प्यार करें और इसे स्वीकार्य वैकल्पिक जीवन शैली के रूप में कभी न स्वीकारें या इसे हल्के में न लें। अंत में कामुकता पर आदेश पशुता के विरुद्ध निषेध के साथ समाप्त होते हैं। मनुष्य और पशु के बीच यौन संबंध, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर विस्तार से जाने की आवश्यकता है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि यह गलत है और यह एक ऐसा कारण है जिसका हम पहले भी सामना कर चुके हैं। यह यौन व्यवहार गलत है क्योंकि यह तेवेल का कार्य है। आमतौर पर गलत तरीके से विकृति के रूप में अनुवादित इसका शाब्दिक अर्थ है भ्रम या अनुचित मिश्रण। भ्रम और अनुचित मिश्रण परमेश्वर के लिए एक अपराध है और वह इसके खिलाफ आदेश देता है। विचार यह है कि प्रजातियों को मिलाना भ्रम पैदा करता है, मनुष्य और पशु को मिलाना अनुचित मिश्रण है। किसी भी प्रजाति के भीतर अच्छे और उचित यौन व्यवहार का जो उद्देश्य है वह वहीं बना रहना चाहिए और भ्रम या अनुचित मिश्रण व्यवस्था और शुद्धता के विपरीत है। इसलिए भ्रम कुछ ऐसा नहीं है जिसमें परमेश्वर के लोग, जिन्हें मनुष्य जितना संभव हो सके परमेश्वर का अनुकरण करना है, शामिल हों। मुझे यह भी उल्लेख करना चाहिए कि यह किसी भी तरह से मानव जातियों के मिश्रण को संदर्भित नहीं करता है। बाइबल कभी भी नस्ल से संबंधित नहीं है, भले ही यह इब्रानियों और अन्य जातियों के बीच अंतर करती है। फिर भी वास्तव में यह नस्ल के बारे में भी नहीं है, क्योंकि किसी भी नस्ल के लोगों का हमेशा से ही इज़राइल में शामिल होने का स्वागत किया गया है, बल्कि यह लोगों को जानवरों के साथ मिलाने के बारे में है।
फिर भी मनुष्यों को जानवरों के साथ मिलाने से परे इस आदेश का मानव प्रजाति के भीतर लोगों के मिश्रण पर भी प्रभाव पड़ता है। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि चिंता अपवित्र लोगों को पवित्र लोगों के साथ मिलाने के बारे में है, या पुराने नियम के संदर्भ में इज़राइल के लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलाना जो इज़राइल में शामिल नहीं है और शामिल नहीं होना चाहता। फिर भी हालांकि यह नस्लीय या वंशावली शुद्धता का उल्लेख नहीं कर रहा था, यह उन लोगों का उल्लेख कर रहा था जिनकी वफादारी यहोवा के प्रति थी, न कि उन लोगों के प्रति जो नहीं थे, क्योंकि बाइबल में शुरुआती समय से ही विदेशियों, अन्य जातियों के लोगों का इज़राइल में शामिल होने और नस्लीय इब्रियों से विवाह करने का स्वागत था। चेतावनी यह थी कि उन्हें अपने झूठे देवताओं की पूजा छोड़ देनी चाहिए और केवल इज़राइल के परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। यह अध्याय इस चेतावनी के साथ समाप्त होता है कि तुम, अर्थात इज़राइलियों और उनके बीच के विदेशियों, इनमें से कोई भी निषिद्ध यौन कार्य मत करो, अन्यथा जो मिस्रियों के साथ हुआ और जो कनान देश के निवासियों के साथ होने वाला है वही दैवीय रूप से इज़राइल पर पड़ेगा। यह कोई बेकार की चेतावनी नहीं है और न ही यह प्रतीकात्मक है। पद 25 में कहा गया है कि यौन व्यवहार पर इन कानूनों का उल्लंघन करने से देश अपवित्र हो जाएगा। हमने लैव्य व्यवस्था में अशुद्धता के एक बुनियादी सिद्धांत को विकसित होते देखा है। यह है कि अशुद्धता लोगों से निर्जीव वस्तुओं में और फिर वापस फैल सकती है और फैलती है। लैव्य व्यवस्था 18 में जिन अनुचित कार्यों के खिलाफ बात की गई है उनमें से हर एक उल्लंघनकर्ता में धार्मिक अशुद्धता उत्पन्न करता है। किसी राष्ट्र की शासक आबादी के पर्याप्त हिस्से द्वारा किए गए इन कार्यों की पर्याप्त संख्या उस राष्ट्र की भूमि को अपवित्र अशुद्ध बना देगी और परिणाम स्वरूप परमेश्वर कार्रवाई करेगा और उन लोगों को उनके विरुद्ध न्याय के रूप में उस देश से निकाल देगा। पूरे वचन में यहोवा ने स्पष्ट किया है कि भूमि और उसके निवासी आपस में जुड़े हुए हैं। अपनी भूमि से निर्वासित होना या किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का पतन होना या किसी राष्ट्र पर प्राकृतिक आपदाओं की एक भयानक श्रृंखला का सामना करना, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे परमेश्वर प्रकृति को उस भूमि के निवासियों के विरुद्ध आने देगा जो दुष्ट लोगों से भरी हुई है, जिन्होंने अपनी भूमि को अपवित्र कर दिया है। और निश्चित रूप से कुछ संतुलन बिंदु है जिस पर यहोवा के विरुद्ध विद्रोह के कुछ कार्य बहुत अधिक हो जाते हैं और परमेश्वर कार्रवाई करता है।
हम ठीक से नहीं जानते कि वह बिंदु कहाँ है, लेकिन यह मौजूद है। उत्पत्ति में अब्राहम को परमेश्वर के वचन को सुने, उत्पत्ति 15:13, और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, निश्चित रूप से जान लो कि तुम्हारे वंशज एक ऐसे देश में परदेशी होंगे जो उनका नहीं है, जहां वे 400 वर्ष तक गुलाम और सताए जाएंगे। 14, लेकिन मैं उस राष्ट्र का भी न्याय करूंगा जिसकी वे सेवा करेंगे, और उसके बाद वे बहुत सारी संपत्ति लेकर निकलेंगे। 15, और तुम शांति से अपने पूर्वजों के पास जाओगे, तुम्हें अच्छे बुढ़ापे में दफनाया जाएगा। 16, फिर चौथी पीढ़ी में वे यहां लौट आएंगे, क्योंकि एमोरियों का अधर्म अभी पूरा नहीं हुआ है।
जब यहोवा ने अब्राहम से यह बात कही, तब वह कनान देश में था, और परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि भविष्य में कई वर्षों बाद उसके वंशज इस देश से दूसरे देश में जाकर गुलाम बनेंगे, और फिर बाद में वे बाहर निकलकर कनान देश में वापस आएंगे। ये कब होगा, इसका निर्धारण करने वाला कारक क्या है? पद 16 के अंतिम आधे भाग को देखें, क्योंकि एमोरियों का अधर्म अभी पूरा नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में, जब एमोरी दुष्टता और बुराई के एक निश्चित स्तर पर पहुंच गए, जब बाल बलि और समलैंगिकता और सभी प्रकार की यौन अनैतिकता और बहुत कुछ एमोरियों द्वारा पर्याप्त रूप से व्यापक और स्वीकार्य हो गया, तब परमेश्वर अब्राहम के वंशजों इसराइलियों को वापस उस भूमि पर लाकर कार्य करेगा जहां एमोरी रहते हैं, और एमोरी लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा और शेष को इब्रानियों द्वारा अधीन कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यहां मौजूद दूसरे लोग भी इस बात से उतने ही असहज होंगे जितना मैं हूं। यह सिर्फ एक पुरानी बाइबल की कहानी नहीं है, यहोवा इसी तरह काम करता है। धरती पर हर वह देश जो किसी हद तक भ्रष्ट हो चुका है, जिसे परमेश्वर बहुत अधिक मानता है, उसका बहुत बुरा न्याय किया गया है। चाहे वह द्वितीय विश्व युद्ध का जर्मनी हो, या कुछ मध्य पूर्वी राष्ट्र जिन्होंने इसराइल को परेशान किया है, या कुछ वर्तमान में ईश्वर विहीन यूरोपीय राष्ट्र जो वित्तीय पतन के करीब हैं, वह समय अनिवार्य रूप से आता है जब परमेश्वर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अमेरिका के बारे में क्या? परमेश्वर कब तक हमारे आधुनिक संस्करण के बाल बलि गर्भपात को एक स्वीकार्य राष्ट्रीय नीति के रूप में जारी रहने देंगे? परमेश्वर कब तक समलैंगिकता को इस हद तक महिमा मंडित होने देंगे कि कुछ चर्च संप्रदाय अब खुलेआम समलैंगिकों को बढ़ावा देते हैं और उन्हें परमेश्वर के सेवक के रूप में नियुक्त भी करते हैं? परमेश्वर कब तक इस ग्रह पर अपेक्षाकृत कम लोगों को एक ऐसी जगह पर रहने देंगे जहां केवल एक कार और एक रंगीन टीवी सेट होना गरीबी कहलाता है, जबकि ग्रह का अधिकांश हिस्सा भूखे पेट सोता है? परमेश्वर कब तक हमारे देश में हर सरकार और सार्वजनिक स्थान और स्कूल और गतिविधि से खुद को हटाए जाने की अनुमति देंगे? मुझे इसका उत्तर नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि अगर वह अपने ही अलग किए गए लोगों का कठोरता से न्याय करेगा, जिन्हें वह अपना अनमोल खजाना कहता है, तो वह निश्चित रूप से हम सभी की ओर से आंखें नहीं मूंदेगा।
आइए लेव्य व्यवस्था 19 की ओर चलें। लेव्य व्यवस्था अध्याय 19। लेव्य व्यवस्था के इस विशेष अध्याय को अक्सर इब्रानियों द्वारा कुछ खास के रूप में अलग रखा जाता है। यह एक लंबा अध्याय है और इसे अक्सर तोरह के भीतर एक तोरह के रूप में संदर्भित किया जाता है, यानी अध्याय 19 एक तरह का मिनी तोरह है, या उन नियमों और विनियमों का सारांश है जो कानून के अन्य सभी नियमों और विनियमों का आधार बनते हैं।
जैसा कि हमें बताया गया है कि यहोवा से अपने पूरे मन, पूरे प्राण और पूरी शक्ति से प्रेम करो, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। यह आज्ञा तोरह की सभी आज्ञाओं का आधार है। अध्याय 19 में पवित्र होने का अर्थ बताया गया है। परमेश्वर के लोगों में से एक के लिए पवित्र जीवन कैसा होता है?
प्राचीन रब्बियों ने सिखाया कि इस अध्याय को पूरी सभा के सामने पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें 10 आज्ञाएं समाहित हैं। इसलिए जिस तरह मूसा ने पूरे इसराइल राष्ट्र को ईश्वर के निर्देश पर 10 आज्ञाएं पर ही, उसी तरह अध्याय 19 को भी पूरी सभा के सामने पढ़ा जाना चाहिए।
और वास्तव में हमें 10 आज्ञाओं में से कम 6 का प्रत्यक्ष संदर्भ और शेष 4 का अप्रत्यक्ष संदर्भ मिलेगा। वे 6 आज्ञाएं आधुनिक ईसाई कैनन में छोड़ी गई एक आज्ञा से शुरू होती हैं, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। हां, यह जानकर अधिकांश लोगों को आश्चर्य होता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं मूल एक आज्ञा थी। यदि आपको याद हो तो कई महीने पहले निर्गमन 20 और 10 आज्ञाओं पर हमारे पाठ में मैंने आपको बताया था कि सबसे पुरानी इब्रानी पांडुलिपियों में 10 आज्ञाओं की संख्या ठीक उसी तरह खोजी गई थी जैसे हमारी आधुनिक बाइबल में है। लेकिन जबकि हमारी ईसाई 10 आज्ञाएं हमेशा मेरे सामने तुम्हें कोई अन्य ईश्वर नहीं रखना चाहिए से शुरू होती है, वास्तव में मूल शास्त्रों में मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं को पहली आज्ञा और तुम्हें कोई अन्य ईश्वर नहीं रखना चाहिए को दूसरी आज्ञा माना जाता है। पहली आज्ञा यह है कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं, और दूसरी आज्ञा यह है कि तुम दूसरों को ईश्वर करके न मानना। चौथी या पांचवीं शताब्दी ईस्वी में किसी समय रोमन चर्च ने पहली आज्ञा को समाप्त करने का निर्णय लिया, लेकिन चूंकि बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 9 नहीं बल्कि 10 आज्ञाएं हैं, इसलिए चर्च के अधिकारियों ने मूल दूसरी आज्ञा को 2 आज्ञाओं में विभाजित करके समस्या का समाधान किया। पहली आज्ञा थी तुम किसी अन्य ईश्वर को नहीं मानोगे, और दूसरी आज्ञा थी तुम कोई मूर्ति नहीं बनाओगे। लेव्य व्यवस्था 19 में प्रत्यक्ष रूप से उल्लिखित अन्य 5 आज्ञाएं हैं, 2 किसी अन्य ईश्वर की पूजा न करना, 3 झूठी शपथ न खाना, 4 सप्त का पालन करना, 5 अपने माता पिता का आदर करना और 8 चोरी न करना। बात यह है, ईसाई धर्म में यह एक दुखद दिन था जब चर्च के यहूदी नेतृत्व से गैर यहूदी नेतृत्व में परिवर्तन पूर्ण हो गया, क्योंकि उस समय पवित्र शास्त्र के बारे में वे बातें जो गैर यहूदी दुनिया को सहज और परिचित लगती थीं, वे प्रमुख हो गईं, और पवित्र शास्त्र के बारे में वे बातें जो स्पष्ट रूप से यहूदी थीं और इसलिए गैर यहूदियों के लिए असुविधाजनक और अपरिचित थीं, उन्हें अलग कर दिया गया। अलग की गई उन यहूदी चीजों में संपूर्ण तोरह भी शामिल था, और इसके साथ ही बाइबल में आगे आने वाली सभी बातों के लिए उचित संदर्भ भी अलग कर दिया गया। पवित्रता और इसका सर्वोच्च महत्व और पवित्रता की परमेश्वर की परिभाषा क्या है को भी अलग कर दिया गया। इसलिए जब हम लेव्य व्यवस्था 19 का अध्ययन करते हैं तो हम में से प्रत्येक प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस अध्याय में निहित चेतावनियों को हमारे दिलों में गहराई से डाल देगा, और वह हमें दिखाएगा कि इन दिव्य अध्यादेशों को हमारी 21वीं सदी की पश्चिमी संस्कृति में कैसे लागू किया जाए, न कि उनकी पुनर्व्याख्या की जाए, क्योंकि वास्तव में हमें पवित्र होना है क्योंकि वह पवित्र है। लेव्य व्यवस्था 19 पूरा पढ़ें। अध्याय 19 में सामान्य परिभाषा दी गई है कि पवित्रता के लिए अलग रखे गए व्यक्तियों के जीवन में पवित्रता कैसे प्रकट होनी चाहिए। पुराने नियम में वे व्यक्ति इज़राइल थे, नए नियम में वे व्यक्ति वे हैं जो मसीहा यीशुआ के साथ एकता में आ गए हैं। अब हम इस बात पर वैध तर्क दे सकते हैं कि हमें तोरह में हमारे सामने रखे गए 613 नियमों और विनियों का अक्षरशः पालन करना है या नहीं, लेकिन जो बहस योग्य नहीं है वह यह है कि 1300 या 1400 ईसा पूर्व में जो पवित्र था उसका सिद्धांत और पैटर्न जब तोरह पहली बार मूसा को दिया गया था आज भी वही है। मैं आपके समक्ष जोसेफ हर्ट्ज द्वारा लिखित एक निबंध का संक्षिप्त अंश उद्धृत करना चाहूंगा जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान यूनाइटेड इब्रानी कांग्रेगेशन के मुख्य रब्बी थे। वह सामान्य रूप से लेव्य व्यवस्था 19 के बारे में और विशेष रूप से पवित्रता के बारे में यह कहता है। पवित्रता को व्यवस्था के रूप में न कि भ्रम के रूप में विकसित करते हुए यह सूची लेव्य व्यवस्था 19 की आयतें सच्चाई और सीधे व्यवहार को पवित्र मानती है और विरोधाभास और दोहरे व्यवहार को पवित्रता के विरुद्ध मानती है। चोरी, झूठ बोलना,
झूठी गवाही, वजन और माप में धोखाधड़ी, सभी प्रकार के छल कपट जैसे बाहरों की बुराई करना और संभवतः उनके चेहरे पर मुस्कुराना, अपने भाई से अपने दिल में नफरत करना जबकि उसे दयालुता से बात करना, ये स्पष्ट रूप से जो दिखता है और जो है उसके बीच विरोधाभास है। या जैसा कि प्रोफेसर जी जे वेणहम कहते हैं, पवित्रता नैतिक अखंडता में व्यक्त होती है जो बदले में शारीरिक पूर्णता होती है।
सीधे शब्दों में कहें तो मुझसे पवित्र व्यक्ति यीशु के बारे में बात ना करें, जो आपके दिल में रहता है उसी समय जब आप पवित्र जीवन जीने की जरूरत को नकार रहे हैं। मुझे यह ना बताइए कि आप में ईश्वर की आत्मा निवास कर सकती है, लेकिन आपको ईश्वर के तरह का पालन करने की कोई जरूरत नहीं दिखती। और ईश्वर का तरह क्या है, लेकिन हम जिसे नैतिकता कहते हैं उसका वर्णन है। नैतिकता वह है जो अच्छा है, जो उससे अलग है, जो नहीं है। नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें प्राचीन मध्य पूर्वी सांस्कृतिक संदर्भ में स्थापित इन कानूनों को ठीक उसी तरह लागू करना है जिस तरह से वे 3000 साल पहले लागू किए गए थे। हालांकि कुछ चीजें होनी चाहिए और अन्य चीजों को यथासंभव बरकरार रखा जाना चाहिए, उदाहरण के लिए बाइबल के पर्व। लेकिन क्या नैतिक है और क्या नहीं, इसकी परिभाषा ईश्वर द्वारा निर्धारित की गई थी। इसमें वास्तव में अंतर्निहित सांस्कृतिक बाधाएं नहीं है और इसीलिए इन सिद्धांतों को मनुष्य द्वारा नहीं बदला जाना चाहिए। यह दिलचस्प है कि रब्बी हर्ट्ज पवित्रता की प्राथमिक परिभाषित विशेषताओं में से एक को व्यवस्था के रूप में देखते हैं, पुनः जैसा कि ईश्वर द्वारा परिभाषित किया गया है, न कि मनुष्य द्वारा अराजकता और भ्रम के विपरीत। क्योंकि पिछले सप्ताह जब हम लैव्य व्यवस्था 18 को देख रहे थे तो हमने देखा कि पशुता, मनुष्य द्वारा जानवरों के साथ यौन संबंध बनाना का पाप गलत था क्योंकि यह तेवेल था, यह भ्रम या अनुचित मिश्रण का कार्य था। हम रुककर लैव्य व्यवस्था 19 में कुछ उदाहरणों को देखेंगे जहां भ्रम मुद्दा है और यह कुछ दिलचस्प है और मुझे लगता है कि गहन अनुप्रयोग। लैव्य व्यवस्था 19 के परिचय के बाद और पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं की सामान्य आज्ञा के बाद हमें माउंट सिनाई की 10 आज्ञाओं में से 2 की याद आती है। पद 4 में इसराइल से कहा गया है कि वे अपने पिता और माता का आदर करेंगे और वे मेरे विश्राम दिनों को मानेंगे। पिता और माता के बारे में ऐसा क्या है जो परमेश्वर के लिए इतना महत्वपूर्ण है? उन्होंने आपको जीवन दिया, कम से कम भौतिक अर्थ में, और उन्हें आपको प्रशिक्षित करने के लिए आप पर अधिकार रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह यहोवा के साथ हमारे रिश्ते के समान है। उसने हमें जीवन दिया है और हमें अपने ऊपर उसके अधिकार को पहचानना है। यह एक बार फिर से द्वैत की वास्तविकता है, यानी कुछ सिद्धांत भौतिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र दोनों में एक साथ सत्य है। और निसंदेह यहां हम सप्त के पालन का एक और संदर्भ सामने और केंद्र में पाते हैं। सप्त का पालन करना उन लोगों के लिए परमेश्वर की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जो उस पर भरोसा करते हैं। उद्धार के एक भाग के रूप में नहीं, बल्कि आज्ञाकारिता के रूप में परमेश्वर द्वारा निर्धारित किसी भी चीज की तरह सप्त को बोझ और कामों पर आधारित कानूनी अभ्यास में बदला जा सकता है। और वास्तव में यहूदियों के बीच सप्त विवाद के सबसे अधिक बहस वाले बिंदुओं में से एक बन गया। यह नहीं कि इसका पालन किया जाना चाहिए या नहीं, या यहां तक कि इसे कब मनाया जाना चाहिए, बल्कि असहमति इस बात पर थी कि सप्त का पालन कैसे ठीक से किया जाए। मैं इस बारे में कोई चर्चा नहीं करने जा रहा हूं कि सप्त सप्ताह का 7वां दिन है और केवल 7वां दिन हमारी आधुनिक शब्दावली में शनिवार है, हालांकि ऐसा ही है। मैं ये बताना चाहता हूं कि सप्त उन नैतिक विकल्पों में से एक है जो परमेश्वर हमारे सामने रखता है। यदि आपने उत्पत्ति 6 पर मेरा पाठ सुना है जहां हमने बुराई के स्रोत और उसके अस्तित्व के कारणों और तरीकों के बारे में पता लगाया है, तो शायद सप्त के नैतिक विकल्प होने के विचार को समझना थोड़ा आसान हो। जिन लोगों ने इसे नहीं सुना है उनके लिए यह अच्छा हो सकता है कि आप एक CD प्राप्त करें या हमारी वेबसाइट पर इसे सुने। लेकिन संक्षेप में अवधारणा यह है
कि हमारी इच्छा शक्ति हमारा वह हिस्सा है जिसे परमेश्वर ने नैतिक विकल्प बनाने के लिए रखा है। इच्छा का संबंध प्राथमिकताओं में नहीं है, जैसे आइसक्रीम का फ्लेवर या आपको कौन सा डिओडोरेंट साबुन सबसे अच्छा लगता है या दोपहर के भोजन में क्या खाना चाहिए। परमेश्वर मनुष्यों को कई तरह की पसंद की अनुमति देते हैं जो न तो स्वाभाविक रूप से सही हैं और न ही गलत, लेकिन इच्छा का चुनाव हमेशा सही या गलत, अच्छा या बुरा, आज्ञाकारिता या अवज्ञा के बारे में होता है। उसी तरह सप्त का मतलब पसंद से नहीं है, कोई सप्त का पालन कैसे करता है। आप वास्तव में क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, आप इसे कहां मनाते हैं, आप मोमबत्तियां जलाते हैं या नहीं, आप कौन सी प्रार्थना करते हैं आदि, ये सब पसंद का मामला है, जैसा कि संत पौलुस ने कुलुसियों 2:16 में स्पष्ट किया है। कुलुसियों 2:16, इसीलिए कोई तुम्हें खाने पीने या त्योहारों और नए छांद और सप्त के दिनों के भेदों के बारे में परेशान न करे। परमेश्वर के सप्त और नए चांद को खाने पीने की चीजों की तरह ही खत्म कर दिया गया। इसलिए सप्त के साथ साथ हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारी इच्छाएं नैतिक चुनाव करती हैं और चुनाव हमेशा परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के विरुद्ध होता है। और चूंकि परमेश्वर स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के विरुद्ध, उसकी आज्ञाएं और नियम और अध्यादेश क्या परिभाषित करता है, इसलिए वास्तव में अवज्ञा का अर्थ परमेश्वर के विरुद्ध जाने के लिए हमारी इच्छाओं के नैतिक चुनाव से कम नहीं है।
लेकिन यह भी ध्यान दें कि माता पिता का आदर करने और सप्त के पालन के बीच किसी तरह का संबंध है। न केवल वे पवित्र होने के निर्देश के बाद बताई गई पहली बातें हैं, बल्कि एक ही वाक्य में होने के कारण वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह बात महान रब्बियों की नजर से नहीं बच पाई, क्योंकि इस विशेष वाक्य संरचना का उद्देश्य यह दिखाना है कि इन दो आज्ञाओं के बीच संबंध है। यह दर्शाता है कि जैसे हमारे माता पिता का सम्मान करना अन्य मनुष्यों के प्रति हमारे कर्तव्यों में प्राथमिकता नंबर 1 के रूप में है, वैसे ही परमेश्वर के प्रति हमारे कर्तव्यों में और इसलिए पवित्र होने की दिशा में पहला कदम सप्त को पवित्र करना है। इसे हमारे जीवन में अलग रखना है, जैसे कि परमेश्वर ने दुनिया की शुरुआत में 7वें दिन शनिवार को पवित्र किया था। हम अगली बार अध्याय 19 में आगे बढ़ेंगे।